जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की श्री श्री राधा रास बिहारी जी की श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। इतनी बड़ी संख्या में लोग राधा रानी के धाम में जाकर सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, ये देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। कलयुग के आगे बढ़ते हुए भी अभी भी इतने संख्या में लोग धाम में जाकर सेवा करना चाहते हैं, कितने आनंद की बात है और आशा की भी बात है, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो हमारे उद्धार का कुछ आशा हमारे को लग सकते हो सकता है कि हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो हम सब लोग बरसाना जा रहे हैं, इतने से कितने लोग पहली बार बरसाना जा रहे हैं कैंप के लिए? पहली बार कितने लोग जा रहे हैं? ओके, बहुत अच्छी बात है, कम लोग पहली बार जा रहे हैं, बाकी लोग जा चुके हैं। तो संक्षेप में जो जा चुके हैं और जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए भी ये बताना बहुत जरूरी है। उसको कहते हैं उजड़नी, मतलब रिविजन, कि हम कहाँ जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। हम राधा रानी के घर जा रहे हैं। वो एक भौगोलिक लोकेशन है, भौगोलिक स्थान है, जो मथुरा स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर गांव में अंदर है, जहाँ राधा रानी के पिताजी माताजी का घर था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो उसका महत्व है वो भौगोलिक दृष्टि से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे धाम हैं और उन सब धामों में भगवान जो है वो भगवान के रूप में आते हैं। द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में आते हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के रूप में आते हैं, श्रीरंगम में रंगनाथ जी के रूप में आते हैं, बद्रीनाथ में बद्री विशाल के रूप में आते हैं, अयोध्या में राम के रूप में आते हैं। ये सारी जगहों पर वो आते हैं, लेकिन भगवान का जो स्थिति है उसको लेकर ही आते हैं, भगवान की स्थिति को छोड़कर नहीं आते। एक ही ऐसा धाम है पूरे पृथ्वी पर जिसको हम वृंदावन धाम कहते हैं, जहाँ पर भगवान समझ बूझ कर योजनाबद्ध रीति से सोच समझ कर भगवान का अपना पद छोड़ कर आते हैं। कोई ट्रांसलेट करेगा माता जी के लिए? प्लीज ट्रांसलेट कर। वही कुर्सी लेकर ना, जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू टू ट्रांसलेट। तो यही एक धाम है जहां पर भगवान अपना, भगवान का पद, भगवान का अधिकार और भगवान का दर्शन भी भगवान के रूप में छोड़कर आते हैं। एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं, एक बालक बनकर आते हैं, किसी का पुत्र बनकर आते हैं, किसी का दोस्त बनकर आते हैं, किसी का प्रियकर बनकर आते हैं, ग्वाला बनकर आते हैं, चोर भी कहलाते हैं अपने आप को, है ना, मतलब लोग कहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है उसके अंदर। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको चोर कहलाने में आनंद आएगा? लेकिन भगवान इतने सामान्य बनकर आते हैं कि चोरी भी करते हैं और लोग चोर कहते हैं तो उसमें भी आनंद लेते हैं। कोई गवार कहते हैं, गवार ग्वारिया कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, अनाड़ी कहते हैं, कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, ऐसे भी गाली देते हैं। तो इस रूप में जब उनको ब्रजवासी गोपियां और बाकी सब लोग गाली देते हैं तो कहते हैं कि वेदों में लिखे गए जो श्रेष्ठ आरती पूजा श्लोक सुक्त वचन जितने भी हैं रुचाएं, इनसे भी उनको मधुर लगता है वो। तो ब्रह्मा आदि देवता भी खड़े रहेंगे उनके लिए और ये पुरुष सुक्त गाएंगे, स्त्री सुक्त गाएंगे, विष्णु सुक्त गाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े लंबे लंबी प्रार्थनाएं हमारे शास्त्र में लिखी गई है, तो वो बड़े भाव से भक्ति से गाते हैं, उनमें जिनको उतना जितना आनंद आता है उससे अनंत गुना आनंद उनको ब्रजवासियों की गाली खाने में आता है। इसलिए बार बार जाके चोरी करते हैं। देखिए आप कैसे हमारे भगवान हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे वो सोचते नहीं है, पूरा उल्टा सोचते हैं। और हम उनको वो चोर के नाम से भी पूछते हैं, माखन चोर, है ना। और उस धाम में और एक विशेषता है, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम एक बड़ी संकल्पना है, बिग, लाइक महाराष्ट्र स्टेट और मीरा रोड कैसा है वैसा। वृंदावन धाम महाराष्ट्र स्टेट और बरसाना जो है वो मीरा रोड का छोटा सा इलाका है। तो इसमें उसमें फर्क क्या है? बाय द वे, महाराष्ट्र जैसे बड़ा जो वृंदावन धाम है उसमें भगवान, क्योंकि सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं, वो चप्पल नहीं पहनते हैं, पैर में कुछ पादत्राण जूता चप्पल बूट नहीं पहनते हैं, नंगे पैर घूमते हैं। उसके वजह से उस धाम में रज में उनके चरण चिन्ह निर्माण होते हैं और वो चरण चिन्ह जो है वो ऐसे चरण चिन्ह है कि सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपियां उन्होंने ऐसा एक डिसीजन ले लिया है, रेजोल्यूशन, परमानेंट रेजोल्यूशन, कि इन चिन्हों को कोई नष्ट नहीं करेगा, इनके ऊपर कोई चलेगा नहीं। कैसे वो मुमकिन था ये मुझे आज भी समझ में नहीं आया है, लेकिन है ये बात तो सच है कि उनके चरण चिन्ह जो है वो उस समय बचाए गए थे। अभी कुछ नष्ट हो गए और कुछ बचे हुए हैं। उसको दर्शन करने का भाग्य ऐसा है कि गर्ग संहिता में लिखा है जो भगवान के हस्त चिन्ह, पाद चिन्ह या शरीर के कोई अंग का चिन्ह जिस शिला पर आया हुआ है और जो जिसका दर्शन करता है उसको कभी भी दोबारा जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ता है। ही विल नॉट कम बैक इन द वर्ल्ड अगेन। इफ यू सी द लोटस हैंड प्रिंट, फुट प्रिंट, पाम प्रिंट और बॉडी प्रिंट ऑफ द लॉर्ड ऑन एनी स्टोन। तो ये वृंदावन धाम का महात्म्य है। जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, तपस्वी है, ध्यानी है, योगी है, वो सब वृंदावन में जाकर भगवान के चरणों के रज को अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। ये वृंदावन धाम का महिमा है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए सारे संत तपस्वी ध्यानी योगी साधना करने वाले सभी लोग आकर वहां पर उनकी चरण चिन्ह की रज लेना चाहते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं? वो स्वयं बरसाने में आते हैं और वहां की रज को अपने सर पे लगाने का प्रयास करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बरसाने में राधा रानी वहां पर नंगे पैर चलती है, राधा रानी वहां पर बिना चप्पल के पहनती चलती है और उनके भी चरण चिन्ह निर्माण होते हैं। यहां तक कि जब वो पत्थर पर चलते हैं तो पत्थर भी वहां पर ब्रह्मा है स्वयं। इतना गौरव है बरसाना धाम का कि हमारे ब्रह्मांड के जो सीईओ है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे इस यूनिवर्स के? ब्रह्मा जी सबसे पहले नागरिक है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स। जैसे होता है ना फर्स्ट सिटीजन अमेरिका, फर्स्ट सिटीजन ऑफ मुंबई, महापौर, वैसे ब्रह्मांड के पहले नागरिक कौन है? ब्रह्मा जी। और वो ब्रह्मा जी इतने ऊंचे पद पर होने पर भी बरसाना में पत्थर बने हुए हैं, अपनी इच्छा से तपस्या करके। जैसे हम लोग कुछ बड़ी चीज मांगने के लिए तपस्या करते हैं ना, व्रत करते हैं, कोई नियम पालन करते हैं कि उससे जो आज जो स्थिति है उससे बड़ी स्थिति प्राप्त हो जाए, उसके लिए तपस्या करते हैं हम लोग। तपस्या का भी वे ट्वेल्थ में है बैठे हुए हैं तो टीवी नहीं देख रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, ऊट पटांग खाना नहीं खा रहे हैं। ये तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि ट्वेल्थ के बाद में कोई बड़ा एजुकेशन का मौका मिलेगा, तो हर हर व्यक्ति दुनिया में तपस्या करता है कुछ ऊंची चीज प्राप्त करने के लिए, जो आज नहीं है, आज से ऊंची चीज प्राप्त करने के लिए। तो आप सोचिए, ब्रह्मा जी जो सबसे प्रथम नागरिक है, सारे पावर उनके पास में, निर्माण करने के जो करना है उनको मैनेजमेंट, पूरे बॉस हैं वो, और वो तपस्या करे, वो कितना तपस्या किया है। हरे कृष्णा, आप जरा आवाज मत कीजिए प्लीज। सब लोग तप कहते हैं 12 साल को, है ना, एक तप मतलब एक तप उलट लो, 12 वर्ष हो गए। इन्होंने केवल 1,20,000 साल तप किया है, मतलब एक लाख तप हो गए उनके, 1,20,000। उसमें से 60,000 का रिस्पॉन्स ही नहीं मिला उनको, 60,000 साल तप किया और फिर रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर काम पे चले गए, ड्यूटी किया अपना, सत्ययुग के फिर एंड में वापस 60,000 साल बैठ गए। कितना संयम होगा उनके अंदर, जस्ट इमेजिन। हाँ, बोलेगा उनको क्या है, तो ब्रह्मा जी है, उसमें क्या है। अरे ब्रह्मा जी के लिए भी 1,20,000 बड़े होते हैं बहुत। उसके बाद में भगवान ने दर्शन दिया उनको, बोला क्या चाहते हो आप। तो उन्होंने कहा कि आप और राधा रानी और आपके भक्तों के चरणों की धूल चाहते हैं, क्योंकि उसी धूल में सब जीवन के उद्धार का राज छुपा हुआ है। बोलते जाओ वृंदावन में जाओ। बोले वृंदावन तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाऊं। बोलते वृषभानुपुरम गत्वा, वृषभानुपुर में जाओ। ममोपरी क्रीड़ा करिष्यसी, आप मेरे ऊपर क्रीड़ा करो, ऐसे उन्होंने कहा। तो फिर वो क्या बने, पत्थर बने, यानी कि पर्वत बने। पत्थर का ना कुछ पोजिशन नहीं होता है, पता है आपको, पत्थर में लोग कुछ भी कर लेते हैं, बताने की जरूरत नहीं यहाँ पर क्या क्या करते हैं। पैर से चलते हैं, गंदे पापी पैर लेके चलते हैं, जो भी करना है पत्थर पे होता है। पत्थर कुछ रिस्पॉन्स देता नहीं है, पत्थर एक प्रकार निर्जीव वस्तु है, लेकिन पत्थर में भी जान होती है, शास्त्र हमारे बताते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे क्या कहते हैं अनकॉन्शियस रूप धारण करने का निर्णय ले लिया और पत्थर बने वो। तो इसलिए 4 शिखर है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के सर के 4 शिखर है वहां पर, क्योंकि उनके 4 सर है ना, भानुगढ़, विलासगढ़, मानगढ़ और दानगढ़। और वहां पर हमारे कृष्ण भगवान, जिनके चरणों की राज सब चाहते हैं, वो आकर माथे पे धूल लगाते हैं। हम सब लोग साधना करते हैं, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, उपवास करते हैं एकादशी का, शास्त्र पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, साधना बहुत बड़ी होती है। और हम करते हैं उनके भक्त कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए, और कृष्ण भगवान भी साधना करते हैं, क्योंकि वो भी अपने को एक उदाहरण देना चाहते हैं, इसलिए वो भी साधना करते हैं। उनकी साधना क्या है, वो मुख से राधे राधे बोलते हैं, मन में राधा रानी का चरणों का ध्यान करते हैं, आलिंदी तटयोर, हाँ बहुत बड़ा श्लोक है राधा सुधानिधि में। तो वो उनके चरणों का ध्यान करते हैं और चरणों की रज प्राप्त करना चाहते हैं, और जब भी नहीं मिलती है तो बरसाना में आके वो लोट पोट भी हो जाते हैं, ही रोल्स इन द डस्ट ऑफ बरसाना। परम भगवान है वो, सृष्टि के रचयिता हैं, क्रिएटर ऑफ द होल क्रिएशन, ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड तो एक क्या कहते हैं उसको, सरसों के दाने की तरह है, एक बड़े पोते में, एक बड़े अगर गोनी गोनी में अगर सरसों के दाने आपको दे गए 100 किलो, और आपका बोला गया कि थो गिनो आप, शायद आपकी जिंदगी चले जाएगी उसमें, वो दानों को गिनने में, उतने ब्रह्मांड है वो। तो भौतिक जगत में उसके आगे वैकुंठ है, वो भी ऐसे ही सरसों के दाने की तरह बोरी में रखे हुए हैं, वो सबके निर्माता है वो, एक पत्ता भी उनकी इच्छा से नहीं हिलता है, हर चीज उनकी इच्छा से होती है। और वो व्यक्ति राधा रानी के चरणों की धूल लेना चाहते हैं, इतना महान धाम है। ये मत समझना कि हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, हाँ ये पिकनिक है नहीं, अगर पिकनिक समझ के जा रहे हो तो रॉन्ग नंबर है आपके लिए, आपको पिकनिक का लाभ नहीं मिलेगा उधर। लेकिन अगर आप इस भाव में जाओगे, इसका गौरव समझते हुए, तो पिकनिक का आनंद भी मिलेगा आपको, मनोरंजन भी होगा आपका, हर तरह से तन मन आत्मा से बुद्धि से आपका मनोरंजन होगा। लेकिन केवल उसके लिए जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ना ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ और बोलने जा रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर चीज में, हर कार्य में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है वो कार्य, क्या कर रहे हैं आप, जो कोई झाड़ू लगा रहे हैं, या कोई मरीजों को सॉक्स पहना रहा है, या कोई ऑपरेशन कर रहा है, या कोई भोजन बना रहा है, या कोई चपाती रोल कर रहा है, ये कार्य है, ये कार्य उसका एक हिस्सा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है कार्य का, वो है कार्य के पीछे का भाव। होटल में भी एक नौकर जो पगार लेकर रोटी बनाता है, और घर में भी एक माँ रोटी बनाती है, दोनों का काम सेम है, लेकिन सेम है क्या वो? नहीं है। माँ प्रेम से बनाती है, क्या कहते हैं ना, वो देखभाल, केयर, कंसर्न, इस भाव से बनाती है। उसमें बहुत अंतर होता है, भले वो उतनी पॉश नहीं होगी जितने होटल में मिलती है, उतनी गोल नहीं होगी जैसे होटल में मिलती है, लेकिन जो आप माता के हाथ की रोटी खाते हो ना, तो आपकी आत्मा पुष्ट हो जाती है, आपकी आत्मा को पोषण मिलता है और समाधान प्राप्त होता है, जो होटल में आपको फाइव स्टार में भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये सब बताया जा रहा, क्योंकि आप सब लोग सेवा करने वाले हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई सोचेगा क्या किटकिट है, जो तो हम लोग दर्शन करने आए थे, दिन भर प्रभु जी बोल रहे हैं, देखो बार बार 12 घंटा करना पड़ेगा, कोई बीमार होगा तो 14 घंटे भी करना पड़ेगा, इतना डरा रहा है हमको। इस भाव से करेंगे तो फिर आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। और अगर कोई प्रेम से, जैसे उन्होंने कहा ना, अर्जुन का उदाहरण दिया, फोकस, क्या दिख रहा है आपको? मुझे बाएं आंख की पुतली दिखाई पड़ रही। ऐसा जिसका फोकस होगा ना, उसकी झोली जो है ना, भर भर के भगवान भर देंगे कृपा से, और राधा रानी स्वयं भर देगी। जिसके कृपा के इच्छुक भगवान भी है, वो राधा रानी आपकी झोली भर देगी। और एक एक बार अगर आप इस तरह से जाओगे बरसाने में, एक बार केवल, और एक बार इस तरह से जाके सेवा करोगे इस भाव से, तो एक ही बार के ट्रिप से आपका उद्धार और गौलोक गमन जो है वो निश्चित है, शास्त्र में लिखा है। वन विजिट टू बरसाना एंड वृंदावन धाम इन द फोकस्ड डेडिकेटेड सर्विस एटीट्यूड इज इनफ टू टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ऐसा वो तीव्र धाम है, वहां पर की गई जो सेवा है ना, जो आप करेंगे, वो यहां पर भी कर सकते हैं। बॉम्बे में भी हम लोग आई कैंप लगाते हैं, बहुत लोग जाते हैं यहां से, हाँ 100 गांव हम लोग ने लिखे रखे हैं यहां पर, और सब लोग वहां पर वही करते हैं जो आप बरसाने में करने जा रहे हो। लेकिन यहां पर आप लोग जो करते हैं वो भक्तिभाव से करना चाहिए, लेकिन आप समझो आपको वो करने से एक यूनिट आपको लाभ मिलेगा, समझो एक यूनिट, और वही सेवा आप बरसाने में जाके करोगे ना, वही सेवा सेम, तो आपको 100,000 गुना उसका लाभ मिलेगा। ऐसा इंटेंस और तीव्र धाम है ये, 100,000 टाइम्स स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ डूइंग द सेम थिंग इन बरसाना। एक हरे कृष्ण मंत्र बोलोगे आप, तो आपको 100,000 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलने का लाभ मिलेगा वहीं बैठ के। तो वही केवल मूर्खी व्यक्ति हो सकता है, वो जहां वहां जाकर टाइम पास करने का सोचेगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? क्योंकि यहां पर भी आपको भक्ति करने में आलस है, समझो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको है, लेकिन कभी कभी लगता है भाई क्या अभी रोज सुबह उठने का, क्या संडे का दिन है, थोड़ा 11 बजे उठ जाऊं, 12 बजे जब करूं तो ठीक रहेगा, ऐसा लगता है कभी कभी। तो उस व्यक्ति को भी जिसको आलस्य है भगवान का नाम लेने में, वहां जाकर उत्साह से नाम लेना चाहिए, क्योंकि उसको ना कम समय में बहुत दिनों का लाभ एक साथ मिलने वाला है। तो आलसी व्यक्ति को भी बहुत उत्साह से वहां जाना चाहिए, वो आलसी व्यक्ति का लेजी इंटेलिजेंस है, बोला ठीक है भाई बॉम्बे में आराम किया, लेकिन यहां पर नहीं करना चाहिए, 15 दिन में जितना भी कमाना है कमा लो। लोग कैसे कहते हैं, दुबई जाते हैं ना, दुबई जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, जितना भी ओवर टाइम ये करके, कभी कभी ब्लड भी देते हैं, वो ब्लड देके भी कुछ पैसा मिलता है, वो ब्लड भी देते हैं, 12 घंटा ओवर टाइम भी करते हैं, और संडे को भी काम करते हैं, ताकि 3-4 साल में जितना बटोर के आ जाए तो मुंबई में फिर आराम कर सकते हैं। ऐसे आते हैं ना लोग फॉरेन कंट्री में, कम समय में अधिक धन कमाने के लिए। उसी तरह से कम समय में अधिक आध्यात्मिक धन कमाने के लिए हम लोग धाम में जाते हैं, और धाम एक दुधारी तलवार की तरह होता है, रेजर्स एज दोनों तरफ से। अगर कोई किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं है, किसी की चेतना सही नहीं है, मूड सही नहीं है, कुछ टाइम पास करने का है, कुछ एंजॉय करने का है, रूल तोड़ के कुछ अलग काम करने का मूड है, तो ना अपने लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे, नुकसान करके आप लौट के आएंगे वहां से। तो इतना हम लोग प्रयास अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस हृदय से ऐसी इच्छा है कि हमारे संगठन के अंदर से, यहां पर से कोई भी वहां जाएगा हमारे आयोजन में, वो कोई भी व्यक्ति वहां पर एक आयोटा, एक क्या कहते हैं उसको, इतना सा भी नुकसान करके वापस लौट के नहीं आना चाहिए। और सभी व्यक्ति को, एक तो है नुकसान नहीं होना चाहिए और सभी व्यक्ति को जितना भी हो सके उतना कृपा बटोर के वहां से आना चाहिए। ये हमारा एक हृदय से भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि आप लोगों के मन में, भाव में, मूड में किधर भी ऐसा विकार ना आ जाए जिससे आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और जिसके लिए गए थे वो खोकर आप वापस आएंगे, ऐसा वो धाम है। और एक बात है, वहां पर भगवान सब जगह पर वृंदावन में भी कृष्ण के रूप में घूमते हैं, एक लड़का के रूप में घूमते हैं, लेकिन जब बरसाना में जाते हैं ना वो सखी बन जाते हैं, चुनरी ओढ़ लेते हैं, उनका नाम है श्यामा सखी, श्यामा सखी का रूप धारण करके जाते हैं, चुनरी ओढ़ के अपने चेहरे को छुपा के जाते हैं, इतना उनको राधा रानी से प्रेम है और इतने वो लालायित रहते हैं, इतने व्याकुल रहते हैं कि वहां पर किसी भी अरे गरे मर्द को प्रवेश नहीं होता है उनके महल में, केवल सखियों को प्रवेश है, तो सखी बनकर जाते हैं और फिर एकांत में उनका संग करते हैं, रोते हैं, राधा रानी मान करती है, उनको समझाते हैं, मनाते हैं, उनको चरणों में गिर जाते हैं, कभी कभी उनके चरण अपने नेत्रों के द्वारा बहने वाले अश्रुओं से धोते हैं। अब ये राधा रानी क्यों करती है, वो ऐसा नहीं कि बहुत घमंडी है, नहीं, वो प्रेम को बढ़ाने के लिए करती है, बरसाने को समझना भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जैसे हमारा घर होता है ना, कोई अमीर आदमी होगा तो उसका बंगलो होता है, उसके अंदर ऊपर चार कमरे होते हैं, दो बेडरूम होते हैं, गैलरी होती है, एक हॉल होता है, खाली जगह होती है, बैठने की जगह होती है, ड्राइंग रूम होता है, आंगन होता है, गार्डन होता है, घर में कई हिस्से होते हैं, लेकिन घर के प्राइवेट पति पत्नी वाले बेडरूम में सब लोग नहीं पहुँचते हैं, तो एकदम बहुत क्लोज व्यक्ति है ना उसी को वो अपने प्राइवेट बेडरूम में जाकर बिठा कर कभी बात कर सकता है या कर सकती है कोई घर की स्त्री, लेकिन आम व्यक्ति जो भी आएगा ना उसको वो ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, चाय पानी देंगे वहीं से, अगर पोस्टमैन आएगा तो दरवाजे से ही विदा करेंगे, कोई ऐसा ही ऑफिशियल आदमी आएगा, कोई LIC का एजेंट आएगा तो उसको थोड़ा सा बिठाएंगे सोफा पर, रिश्तेदार आएगा तो एक दो कमरे दिखाएगा किचन में, लेकिन जो एकदम अंतरंग व्यक्ति है निकट वही प्राइवेट कमरे में अंदर जा सकता है। तो बरसाना वृंदावन धाम का बहुत ही अंतरंग कक्ष है, मोस्ट इनर चेम्बर ऑफ द होल होली धाम, वो अपने आप में स्पेशल है क्योंकि भगवान वहां पर भगवान का पद छोड़ के आते हैं, इसलिए वो अपने आप स्पेशल है, उसके अंदर भी एक प्राइवेट जगह है जहां पर सब लोग प्रवेश नहीं करते, यहां तक कि पूरे भगवान के जन्म के बाद से जितना इतिहास हम लोग पढ़ते हैं भागवत में उसमें से कई जगह पर राक्षसों को भगवान ने मारा है, लेकिन बरसाना में भगवान ने किसी राक्षस को नहीं मारा है क्योंकि राक्षस वहां पर उसको बंद कर दो, अलार्म है, कोई वहां पर प्रवेश नहीं करता है, किसी को आने नहीं दिया है, कंस भी आया तो लड़की बन गया, वहां पर दोबारा नहीं आया, ना किसी को भेजा, कारण क्या है उसका, कारण यह है कि भगवान वहां पर अपने सखियों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, भाइयों के साथ में एकदम उत्कट और अंतरंग लीला करना चाहते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। हाँ, गौचारण करते करते राक्षस आ सकता है, उसको मार भी सकते हैं, वापस स्नान करके भोजन कर सकते हैं, गौचारण में चल जाता है गाय चराते समय, लेकिन गोपियों के साथ, माता पिता के साथ में बैठते हुए नहीं हो सकता है, इसलिए कंस को स्त्री बनाकर उन्होंने सभी लोगों को दूर रखा है, नो डिस्टर्बेंस, नो एंट्री फॉर डिमंस, ऐसा विशेष धाम है वो। और एक बात आपको समझना जरूरी है, प्रभु जी अपने कैंप में कितने लोग हैं, सच्ची प्राण प्रभु अपने कैंप में टोटल कितने लोग सेवा करने वाले, कुल मिला को 421 लोग सेवा करने वाले हैं, है ना, कहते हैं 9 करोड़ लोग रोज हर साल बरसाने में पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, कथा यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, कोई यात्री बनकर आता है, कोई टूरिस्ट बनकर आता है, 9 करोड़, उसमें बहुत श्रद्धालु होते हैं क्योंकि इतने अंदर तक जिसका नॉलेज होगा वही पहुंच पाएगा ना, तो अपने बांके बिहारी, वृंदावन, मथुरा, केशव, कौड़िया मठ और जन्मस्थान करके वही चले जाते हैं, हो गया हमारा वृंदावन मथुरा हो गया ऐसा लगता है उनको, लेकिन बरसाने तक पहुंचने के लिए नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज वाले लोग 9 करोड़ लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन आजकल का स्टैटिस्टिक ऐसा है कि उसमें से केवल 1,000-1,500 लोगों को ही वहां पर सेवा प्राप्त होती है, बाकी सब लोग ऐसे घूमने वाले ग्रुप में आते हैं, अपना धाम दान धर्म करते हैं, कथा सुनते हैं और चले जाते हैं दर्शन करके, लेकिन दर्शन के बाद में, कथा सुनने के बाद में सेवा का मौका केवल उन भाग्यवान जीवों को मिलता है जिनको राधा रानी चाहती है, और उनमें से आप सब लोगों, जिनको राधा रानी अपने धाम में सेवा दे रही है, वैसे उनको आवश्यक नहीं कुछ, तो सर्वसमर्थ है, उसमें क्या जरूरत है हमारी सेवा की। हम वहां पर किसी पर उपकार नहीं करने जा रहे हैं, हमको तो जाने दे रही है वो, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो वहां पर जन्म देती है उनको, वो जहां के निवासी है वो बाय बर्थ, उनको ब्रजवासी कहते हैं, नंबर वन के ब्रजवासी हैं वो। उनको राधा रानी पिछले जन्मों के अनंत पुण्यों को देखकर इस जन्म में उनको वहां जन्म देती है, लोग वही रहते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म कहीं और लेते हैं, लेकिन इतना उनको प्रेरणा होती है कि नहीं अभी बंद करो सब, अमेरिका इंग्लैंड दिल्ली मुंबई मद्रास सब छोड़ के अभी एक घर बना लो वृंदावन में, वहीं रहना है हमको। वो सेकेंड नंबर के ब्रजवासी हैं जो वहां पर रहते हैं, ब्रज का वास निवास करते हैं। और थर्ड नंबर के जो ब्रजवासी हैं वो हम लोग हैं सब, वो कुछ समय के लिए जाते हैं वहां पर दर्शन करते कथा सुनते हैं। और उनमें से वो तीसरे कैटेगरी में से भाग्यवान जीव हम और आप हैं सब, जो सालों सालों से वहां पर जा रहे हैं। और जो नंबर वन की ब्रजवासी है, राधा रानी के अति प्रिय लोग हैं, उनकी सेवा करने आप जा रहे हो। वो इतने महान है कि राधा रानी अपनी गोद में रखती है उनको, अपने धाम में रखती है, बहुत कृपा करती है उनके ऊपर, सब देखभाल करती है, उनका वापस जन्म नहीं होता है जिनकी आप सेवा करने जा रहे हो। वो सब इस लास्ट लाइफ के लिए, इतना प्रेम है उनके हृदय में, वैसे लोगों की आप सेवा करने जा रहे हो। ये मत समझना कि हम उपकार करने जा रहे हैं, बेचारे गरीब लोगों पर हम उपकार करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी गलत फहमी आपकी है। हम आध्यात्मिक दृष्टि से हम गरीब हैं, वी आर स्पिरिचुअली पुअर। हम अपने आप पर उपकार करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, और सेवा के बिना, सेवा के सामने और कोई ऐसा और कोई काम नहीं जो अपने ऊपर उपकार करने के लिए योग्य है। सेवा ही ऐसा एक कार्य है जो हम अपने आप को उपकार करने के सोच सकते हैं उसके लिए। इसलिए अपने भाग्य को समझना वहां जाने के पहले, बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा आपको, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी आपके लिए, बहुत सारा मेहनत। हमारे डॉक्टर चौधरी जो है ना, कल तक कई दिनों तक, कई वीक हफ्तों से, कल तक रात 12-12:30 बजे तक अस्पताल के वार्षिक सम्मेलन को आयोजन करने में लगे हुए थे, शायद 1 बजे सोए होंगे, और आज उठ के तुरंत ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने आज तुरंत किया हुआ है। इतना मेहनत करते हैं कि चीज़ को देखते हैं कि आप लोगों को असुविधा ना हो। तो बरसाना धाम तो गांव है, वहाँ पर इतनी सारी सुविधा बम्बई जैसे नहीं है, बहुत ठंड होती है, बहुत सारी योजनाएँ बनानी पड़ती है, गर्म पानी गर्म ही नहीं होता है, और गर्म पानी लिया तो पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है, ऐसा बहुत सारी लीला वहाँ पर होती है। गर्म पानी दिया आपको खोलता हुआ और आप लेके गए अपने रूम में, तब तक ठंडा हो जाता है वो, और ठंडा पानी अगर गर्म से मिलाए, गलती से भी मिलाएंगे उसके अंदर ना, तो लगातार लगेगा आपको ये गर्म है कि ठंडा है, क्योंकि ठंडे का इतना प्रभाव है, वो गर्म का प्रभाव खत्म, तो वो भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको असुविधा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उन सारे असुविधाओं को आप हृदय से स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम लोग वहां पर वो एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग वहां सेवा करने जा रहे हैं। और किसी दिन मेदूवड़ा बना दिया और आपको 4 खाने थे और 3 ही मिल गया तो दुखी मत होना, और आपको 8 खाने थे और 7 मिला तो दुखी मत होना, क्योंकि हम मेदूवड़ा खाने वहां नहीं जा रहे हैं। बार बार पूछना है आपको क्यों जा रहे हैं वहां पर, हम केवल ब्रजवासियों की सेवा करने जा रहे हैं। हम केवल ब्रजवासियों की सेवा करके राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने जा रहे हैं। ये अगर आपके हृदय के शिला पर अगर ऐसे रेख बना दिया आपने ना, एज एनग्रेवमेंट कि आई एम गोइंग टू सर्व, मैं वहां पर केवल सेवा करने जा रहा हूं, बाकी सब सेकेंडरी है, तो आपकी पूरी सेवा का जो कैंप है ना, ये आयोजन है, वो सफल है आपके लिए, इट इज सक्सेसफुल। तो हम आपको विनती करना चाहते हैं कि बरसाना धाम की लीला अगाध है, वहां पर बड़े बड़े पापियों को आसरा देकर राधा रानी ने उनका उद्धार किया है, यहां तक कि जिसको कृष्ण भी ठुकरा देते हैं उनको भी राधा रानी ने आसरा दिया है। अभी देखिए आप क्या पोजीशन है उनकी, जिनको दुनिया का निर्माता ने अगर ठुकरा दिया हो तो किसकी हिम्मत है उसको अपनाने की, बोलो आप, कौन देवता हिम्मत कर सकता है कि भगवान ने जिसको ठुकरा दिया है मैं उसको सहारा दूंगा। लेकिन ऐसे लोगों को भी राधा रानी सहारा देती है, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, सब प्रकार के दर्द वेदना पीड़ा राजा रानी के दरबार में पहुंचने से खत्म हो जाती है। तो आप जाइए, उनकी कृपा याचना करने के लिए जाइए, लेकिन सेवा छोड़कर दर्शन में भागने की कोशिश मत करना। जब दर्शन का समय होगा तब दर्शन करना, जब सेवा का समय होगा तब सेवा करना, जब सोने का समय होगा सो जाना, यहां वहां की बातें करने में समय मत गवाना। सेवा ईटिंग, सेवा स्लीप, अपने आप को फ्रेश रखना, सेवा के लिए 100% उपलब्ध रहना। ये नहीं कि रात में कुछ बातें करते करते 1 बजे सोए और अभी बहुत नींद आ रही है, फिर आलस से हो रहा है, सेवा में मन ही लग रहा नहीं है, तो आप अपना बस आपका मिस हो रहा है। सबसे ऊंची चीज है ना वो सेवा है। कल भी हमारे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज अपनी कथा में बता रहे थे, एक है भोग, हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन एंजॉय करने का हमको अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान एंजॉय रहे तो हमारा अधिकार नहीं है। एक है त्याग, थोड़े त्याग क्या करोगे आप, आपके त्याग करने की कोई वस्तु आपके है ही नहीं। जैसे आपके घर पे आया, बोला मैंने आपका सोफा में त्याग कर देता हूँ, आपका फ्रिज में त्याग कर देता हूँ, तो आप लोग हंसेंगे कि डॉक्टर शानबाग पागल हो गए, मेरे घर पे आके बोलते कि आपका फ्रिज में त्याग कर रहा हूँ। वैसे त्याग करने के लिए भी हमारे पास कोई माल स्वामित्व नहीं है किस चीज़ का, तो बचता क्या हमारे लिए? भोग भी हमारा नहीं है, त्याग भी हमारा नहीं है, तो बचता क्या है? केवल सेवा। हम कर क्या सकते हैं वो सेवा, ओनली वन थिंग वी कैन डू, दैट इज सेवा, जो हमारा क्या कहते हैं उसको प्रीरोगेटिव, मतलब हमारा अधिकार है वो, जो हमारे हिस्से में आता है वो। बाकी भोग करना भी हमारे हिस्से में नहीं, त्याग करना भी हमारे हिस्से में नहीं। आप लोग बाप रे कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत हैवी है ये दिमाग में घुसने रही है, बाप रे, ऐसा भी नहीं है, सिंपल है बहुत। और आप न जानते हुए और जानते हुए सब लोग सेवा ही कर रहे हैं, कोई पत्नी की कर रहा है, कोई पति की कर रहा है, कोई बच्चे की कर रहा है, कोई राष्ट्र की कर रहा है, कोई अपने शरीर की कर रहा है, कोई अपने बालों की सेवा कर रहा है शैम्पू लगाकर, कोई अपने चेहरे की सेवा कर रहा है कोई मसाज लेकर, सब लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये सेवा जो हमारे लिए उद्धारकारी है वो भगवान की सेवा है, और भगवान के ऊपर भी एक सेवा है, वो भगवान के भक्तों की सेवा है। मद भक्ता पूजा व्याधिका, भगवान ने कहा है मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों की सेवा आप करोगे तो मुझे आनंद आएगा, मेरी नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों की सेवा जरूर करो। जैसे हम किसी बालक की सेवा करते तो पिता माता को बड़ा आनंद होता है, उस तरह से उनके जो प्रिय ब्रजवासी जीव हैं, जो उन्होंने उनको जन्म देकर अपने पास रखा है बरसाने में, उनकी सेवा करोगे तो राधा रानी और कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप जिस दिन जिस समय, अभी बहुत दिन रहेंगे आप, बहुत समय बहुत क्षण रहेंगे वहां पर, आप बहुत घंटे रहेंगे, बहुत दिन भी रह सकते हैं आप, उतने दिनों में उतने घंटों में उतने क्षणों में जितनी भी आप सेवा करोगे उसी क्षण राधा रानी आपका नाम कृष्ण को बताएंगी, ये बढ़िया भक्त है, इसको आपने कृपा का अधिकार बना देना, अधिकारी हकदार बना देना। उसी समय राधा रानी आपका नाम जिक्र करती है, सिफारिश करती है आपका, और जब राधा रानी सिफारिश करती है तो कृष्ण उसको नकार नहीं सकते हैं, चाहे मन में उनको होगा अरे क्यों उसको सिफारिश कर रही हो, लेकिन वो कर रही है तो वो राधाकृष्ण भगवान उसको नकार नहीं सकते हैं। इस जगह जाकर आप सेवा कर रहे हैं, हम वृंदावन में भी सेवा नहीं कर रहे हैं, बरसाने में सेवा कर रहे हैं जहां पर कृष्ण स्वयं राधा रानी के अधीन रहते हैं। ये रहस्य किसी को पता नहीं है, ना वेद बताते हैं उसको, ना भागवत बताते हैं, भागवत में भी ये बता नहीं पाए सुखदेव जी कि किसी अन्य पुराणों में लिखा गया है कि राधा रानी का पोजीशन क्या है, क्योंकि वो सीक्रेट है, वो हर जगह पब्लिक में नहीं बताया जाता है। लेकिन हम लोगों को यहां पर सेवा मिल रही है इसलिए जानना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं। दिखने में बहुत अंधा लिखेगा आपको, अनडेवलप्ड, बिजली नहीं कभी है, कुछ ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है रहने की, लेकिन स्पिरिचुअली सबसे पावरफुल स्थान है वो। कृष्ण भगवान भी वहां पर अपनी शक्ति और कृपा लेने के लिए जाते हैं, सारा रस भक्ति आनंद जो भी है उसका उगम राधा रानी के चरणों में है, वो कृष्ण भी वहां पर उससे प्राप्त करते हैं और फिर उसका विकास करके प्रचार करते हैं। आपको समझ में आया, सोर्स वहां पर है, लेने कृष्ण वहां जाते हैं, पूरे ब्रज में उस रस को भगवान बांटते हैं, इतनी शक्तिशाली जगह है वो। तो हर साल कुछ नई 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 बात नहीं बता रहा हूं मैं, उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं, वही शरबत नए ग्लास में दे रहा हूं ताकि आप नए उत्साह से उसको पी लें और समझ लें। तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप लोग, जैसे कैसा होता ना कि कुछ भी श्रेष्ठ भाव को ना 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे आधा दिन पूरा दिन, बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है है ना। अभी बहन की शादी है हमारी, तो इतने उत्साह से जाते हैं, लेकिन सेरेमनी आगे बढ़ता है तो 4 घंटे होते हैं, फिर सब सोने लगते हैं, बैठ के भी कभी खत्म होगा। अरे पंडित जी जरा निपटाओ जल्दी बाबा, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे आके बोलते हैं पंडित जी को, कितना देर लगेगा अभी, कितने वेदी बाकी हैं, अभी जरा भोजन का समय हो रहा है, जल्दी जल्दी निपटाओ। बड़े उत्साह से शादी में आ रहे हैं, थस धस के थक जाते हैं बीच में। फिर वैसे ही अभी हम आपको इतना ऊंची भावना के बारे में बता रहे हैं, तो हो सकता है अभी आपके दिन आज फायर्ड अप हो जाएंगे, जैसे बरसाना पहुंचेंगे तुरंत जमीन पर लोटपोट होके दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर दूसरे दिन बड़ा डाड़ा नहीं मिलेगा तो झगड़ा करेंगे हो सकता है। लेकिन इस सारी स्थितियों में आपको उसी भाव को बनाए रखना है, एक दूसरे से चर्चा करना है उस बारे में, कंप्लेंट वाले लोगों के साथ संग नहीं करना है, जो लोग ऋणी है कृतज्ञ है उनके साथ बैठना है आपको, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले लोग सब जगह होते हैं, क्या है व्यवस्था नहीं है, इतनी ठंड पड़ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं उधर व्यवस्था होगी, वो क्या देखते हैं वहां पर, ये नहीं है वो नहीं है। आपको जानना चाहिए कि हम वहां पर, हमारा कोई स्थान नहीं है, हम किराए के जगह पर काम करते हैं। आप लोग प्रार्थना करो, हमने 5 एकड़ जगह लिया है, बहुत जल्दी अस्पताल हमारा बन जाएगा, तो हमारे नियंत्रण में कुछ सुविधाएं हम आपको दे सकते हैं। हाँ 5 एकड़ जगह है हमारी, और हम लोग राधा रानी को गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं कि कब कृपा करेंगे आप, ताकि हमारे भक्तों को बहुत अच्छी सुविधा हो जाए। हम लोग बनाएंगे उसको, और आपको और अच्छी तरह से रखेंगे, और अच्छी सेवा आप कर सकते हो। लेकिन अभी हम किराए के जगह पर हैं, इसलिए कुछ कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपको विनती करते हैं कि आप अच्छे श्रेष्ठ भाव से आइए, और श्रेष्ठ भाव से अपना धन, आध्यात्मिक धन लुटा के ले जाइए, उसी के लिए जिंदगी है, नहीं तो क्या है, धन कमाने के लिए तो सब लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं, कौन खुश है बताइए, सबसे बड़ा करोड़पति भी खुश नहीं है और गरीब आदमी भी खुश नहीं है, सब लोग बीच में भी दुखी है, कोई धन कमा के आज खुशी नहीं हुआ है, नहीं तो फिर अमीर घरों के लड़के लड़के लड़ते नहीं कोर्ट में जाके, अगर इतना धन है कि छात पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं तो कोर्ट में क्यों जाना है, फिर भी कोर्ट में जाते हैं और बहुत समय बर्बाद करते हैं, और चाहिए उनके लिए। आदमी को संतुष्टि मिलती है सेवा करके, ध्यान रखना इस बात का, बिना सेवा किए किसी को भी संतुष्टि नहीं मिलती है, किसी का प्रेम नहीं होता है, किसी का रिश्ता नहीं बनता है, किसी का संबंध नहीं बनता है, समाधान नहीं प्राप्त होता है बिना सेवा के, सेवा ही इन सब चीजों का स्रोत है। और जो सेवा करेगा, या तो घर में अपनी पत्नी की बच्चों को भी करेगा, उसी को आनंद मिलेगा, और ऊपर से भगवान के भक्तों की करेगा, भगवान की सेवा करेगा, तो वो उच्च आनंद को स्वाद ले सकता है। तो आप सभी प्रकार के यहाँ पर है, कुछ यंग लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, कुछ उत्साही और नौजवान हैं, सब प्रकार के लोग हैं, कुछ आप जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सब लोगों के साथ मिलजुल के रहना और अच्छी तरह सेवा करना, क्योंकि सब लोग मिलकर उन ब्रजवासियों की संतुष्टि चाहते हैं। सम सिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उन भगवान के प्रिय भक्तों को संतुष्ट करने के लिए हम जा रहे हैं। तो मैं आपको प्लीज हृदय से विनती करता हूं कि बिल्कुल अपने मन में से और कोई विकल्प होंगे हटा देना उसको। आपको लगेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक ही उद्देश्य लेके जाना, सेवा, और वो करेंगे तो आपका जाना सफल है, वहां का रहना सफल है, वहां से वापस आना सफल है, और सेवा करोगे ना तो आपको ऐसा लाभ मिलेगा कि आप साल भर उसी की याद में रहोगे, तड़पते रहोगे कि कब दोबारा जाऊंगा मैं। अगर आपको वापस आते समय बहुत समाधान है, बहुत कृतज्ञता है, बहुत थैंक यू का मूड है आपका, तो आपकी यात्रा सफल है। और आते समय आपके मन में बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, वो आप सुझाव दे सकते हैं हमको, हम सुधर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में कंप्लेंट प्रधान है और कृतज्ञता बहुत नगण्य है, तो समझ लेना आप ही, मैं आपका प्रोग्रेस कार्ड देखने को नहीं आऊंगा, आपको ही देखना अपना प्रोग्रेस कार्ड, सेल्फ एनालिसिस करना है आपको, लेकिन समझ लेना कि आपका यात्रा और कैंप फेल है। और हम सबको यशस्वी देखना चाहते हैं, खुद के एनालिसिस के ऊपर आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई, वो जो बैरोमीटर दिया था, मापदंड दिया था, उसमें हम सफल हैं, और सेवा करने की इच्छा होगी, क्यों जल्दी कैंप समाप्त हो रहा है, क्यों जाने का समय हो रहा है, और सेवा करने की हमको इच्छा थी, तो आपका कैंप सफल है। और ये सफलता आपको मिले, यही मेरी राजा रानी के चरणों में अनन्य प्रार्थना है, तीव्र प्रार्थना है, सततपूर्ण प्रार्थना है, सातत्यपूर्ण। और क्या कहूं, बाकी बातें वहां बताऊंगा। और यहां के बातों का असर जितना रहेगा वहां पहुंचने तक रहेगा, तो हर दिन शाम को बताएंगे 6 से 7, रोज एक इंजेक्शन लगाएंगे ताकि आपका जो वैक्सीन जो है ना अंदर बना रहेगा। रोज एक चार्ज करेंगे, आपका वो मोबाइल होता है ना, कैसे कुछ दिन के बाद कुछ समय बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप उसको लगा देते हैं बैटरी पे, इलेक्ट्रिक पॉइंट पे, वैसे ही शाम को आपको लगा देंगे प्लग पे सबको। सबकी बैटरी चार्ज करेंगे, सब प्रयास करेंगे जरूर भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रार्थना से। लेकिन सब लोगों को तय करना है, यशस्वी होकर लौटेंगे, हम होंगे कामयाब, राधा रानी की कृपा में प्राप्त करने में हम कामयाब होंगे, ऐसे हार कर नहीं आएंगे। और हारना है तो केवल भावना से ही हारना है, तो भावना से क्यों हारे हम, को जीतना ही है राधा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। सब बेसहारा लोग वहां पर आते हैं और सहारा प्राप्त करते हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं है उनको राधा रानी सहारा देती है। पापी से पापी जीव वहां पर कृपा प्राप्त करके उद्धार प्राप्त कर लेता है, उसका उदाहरण अश्वत्थामा है, उसको भगवान ने इतने शाप दिए जिसे आज तक पूरे वेद के इतिहास में प्रत्यक्ष भगवान ने इतने शाप किसको नहीं दिए जितने अश्वत्थामा को दिए। वो भी आया था वहां पर, रो रो के भजन किया उसने राजा रानी का, भगवान ने तो ऐसा ठुकरा दिया था कि भगवान के पास दोबारा सॉरी बोलने का चांस ही नहीं। कभी कभी ऐसा गुस्सा होता है कि वो गुस्से के बाद ठंडा होने का चांस ही नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ सेइंग सॉरी अगेन, ऐसा शाप दिया था भगवान को, क्रोध दिलाया था उसने। लेकिन फिर उसको शिव जी ने बताया, क्या ब्रह्मा जी ने बताया, जाओ उधर जाके राधा रानी के पास लास्ट ट्राई करो। तो वहां पर आया वो और पश्चाताप दग्ध भावना से उसने रो रो के राधा रानी को पुकारा, और राधा रानी ने तत्क्षण दर्शन दिया तपस्या करने के बाद, सारे पापों से कृष्ण के शापों से मुक्त करा दिया उसको। आज भी अश्वत्थामा वहां पर भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनको चिरंजीव होने का वरदान दिया गया था ना, ही विल नॉट डाई, तो आज भी वो जीवित हैं। उधर एक पिपासा वन है, वहां पर निवास करते हो, हम भजन कर रहे हैं, उस वन की रक्षा कर रहे हैं राधा रानी की आज्ञा के अनुसार। ऐसी कृपा कहीं भी देखी नहीं गई है जो राधा रानी के पास है। इसलिए जो सबसे होपलेस हैं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, हाँ, सबसे असहाय, सबसे क्या कहते हैं उसको, होपलेस, हाँ, गए गुजरे, वो सबों को वहां पर आश्रय प्राप्त होता है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, कोई नहीं, हम सब लोग पति थे बाद में, बाय द वे याद रखना, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन हम सब लोग जो जो पद लेकर बैठे हैं, डिग्री लेकर बैठे हैं, जो भी लेकर बैठे हैं, हम सब लोग पति थे, क्योंकि हम लोग इंद्रिय भोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और भोग लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो सब लोगों का सहारा वहां पर है, सब लोगों का इलाज वहां पर होता है, सब लोगों की आत्मा शुद्ध हो सकती है वहां पर, और बहुत जल्द कम समय में हो सकती है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ सब लोगों को, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी तरह से हम रखें। हमारी हर समय कोशिश रहती है, हर साल इम्प्रूवमेंट करते हैं उसके अंदर। इस साल तो हमारा एक बड़ा आश्रम जिसमें आपको आराम से रखा करते थे हम लोग, वो आश्रम ही इस साल नहीं मिल रहे हैं, क्या करें। लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर साहब का निश्चय है कैंप करना ही है, इतना ढूंढे आश्रम को, कहाँ रखें इनको, कहाँ गीजर है, कहाँ नहीं है, कहाँ हमारी लड़कियाँ लड़के सुरक्षित रहेंगे, वो सब देखना पड़ता है। भोजन की व्यवस्था अपने है, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है इस समय, तो वो व्यवस्था भी कर चुके हैं वो, और लोगों को कटौती भी नहीं कर रहे कि भाई ऐसा जगह नहीं है, अभी 150 लोगों को कम कर दो, इतने लोगों को रह सकते हैं, सबको ले रहे हैं। थोड़ा आपको भी सहयोग करना होगा उसमें, क्योंकि हर कैंप में एक नई चुनौती आती है हमारे सामने, हर कैंप में एक नई स्टोरी है, आपको तो किताब लिखना चाहिए उसके ऊपर, हर कैंप की एक स्टोरी, 1999 एक चैप्टर आएगा उसका, 2019 दूसरा चैप्टर आएगा नई स्टोरी के साथ। लेकिन इतनी सारी स्टोरियां हुई, इतनी सारी चुनौतियां हुई, लेकिन कैंप चालू रहा, बरसात हुई, तूफान आया, टेंट गिर गए, आग लग गई, कभी 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 क्या क्या हुआ है आप क्या बताऊं आपको, किसी की मौत हो गई, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, क्या क्या हो गया, बाप रे बता नहीं सकते आपको। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद भी ये सेवा चलती रही है, और सेवा में चुनौतियां आएंगी, याद रखना इस बात का, बिना चुनौती सेवा में मजा ही नहीं आता है। इट्स अ ग्रेट फन एंड थ्रिल टू हैव चैलेंजेस एंड स्टिल कंटिन्यू। भगवान उसी को देखते हैं, अरे बाप रे इतना मैंने कोशिश किया फिर भी कर रहा है, तो कितनी कृपा करेंगे भगवान। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।